Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bas yahi hai. Isko tvam padarth bolte hain. वेदांत में इसका नाम त्वम पदार्थ है। अगर आपको ऐसा साक्षात अनुभव हो जाए तो आपकी 75% वेदांत की साधना पूरी हो गई, 50% नहीं, 75%। अब 25% के लिए कहते हैं ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अब जो परमेश्वर का स्वरूप बताया है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये सर्वव्यापक है, सर्वाधिष्ठान है, ये परमेश्वर का स्वरूप है। काल का जो नियमन करता है वही सर्वज्ञ हो सकता है ना, वही सर्वव्यापक भी हो सकता है, क्योंकि जो काल का नियमन करेगा वो देश का नियमन भी करेगा, जो देश और काल का नियमन करेगा वो वस्तु का नियमन भी करेगा। तो ईश्वरता उसकी क्या है कि ईशानो भूत भव्यस्य, यही जो यहां पर आत्मा नाम की चीज का आपको दृढ़ निश्चय हुआ है कि भाई आत्मा तो यही है बस। अब इसमें तत्पदार्थ माने परमेश्वर का भाव करो। भाव करने से मतलब है इसको ऐसा मान लो कि ये परमात्मा है, मान लो नहीं जान लो। तो जानने का क्या क्या प्रयत्न, क्या यत्न है, तरीका है, तो बोले शास्त्र से जान लो, उपनिषद से जान लो। ये प्रमाण, उपनिषद को प्रमाण क्यों बोलते हैं? प्रमाण माने प्रमाकरणम प्रमाणम, ज्ञान का जो यथार्थ करण हो उसको प्रमाण बोलते हैं। तो ये आत्मा ब्रह्म है, आत्मा है ये तो देखो मैंने आपको बिना किसी उपनिषद शब्द को बोले हुए ये बात बता दिया कि ये ज्योतिर्लिंग के रूप में और शरीर के मध्य भाग में अथवा भ्रू मध्य में अथवा सहस्रार में जहां कहीं भी हो ये आत्मा है, पूरे शरीर में ये व्याप्त है। लेकिन यही परमात्मा है ये युक्ति से नहीं आपको पता लग सकता है। इसमें तो आपको यही उपनिषद ही प्रमाण मानना पड़ेगा। जो लोग महाराज श्री ऐसा बोलते हैं कि जो लोग उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते हैं उनसे हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें कभी बोध होगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ चूंके चुनाचे लगाते रहेंगे। ये आत्मा ब्रह्म है ये, इसमें केवल उपनिषद प्रमाण है, इसी को परमात्मा बोलते हैं। तो ये परमात्मा बोलने वाला उपनिषद ही है, और जो स्मृति ग्रंथ हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं जो इस प्रकार से बोलती हैं वो भी प्रमाण है, और जो इस प्रकार से नहीं बोलती हैं वो प्रमाण नहीं है नारायण। तो ये वेदांत माने उपनिषद जो है ये प्रमाण है, इसीलिए कहा कि ईशानो भूत भव्यस्य, यही जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ईशान है, शासक है, नियंता है। अब इसको शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि प्रमाण में भी युक्ति लगा करके हृदयंगम करना चाहिए। ठीक है, श्रुति तो कह रही है कि ये प्रमाण है, लेकिन इसमें युक्ति से समझ लो इसको। युक्ति माने तर्क वितर्क नहीं होता है, युक्ति माने उपाय, किसी तरह से ये बुद्धि में बैठ जाए। तो देखो जिसका एक तो नियमन ऐसा होता है कि भगवान वहां बैठे हैं बैकुंठ में, और वहां से उनके हाथ में एक डोर है और उस डोर को हिलाते रहते हैं, कठपुतली का तमाशा जैसे दिखाते हैं, और यहां पे उमादार जोशित की नाही सबई नचावत राम गोसाई। एक तो कल्पना ये है नियमन की। तो ये भाई जो एक देश विशेष में परमात्मा को मानते हैं वो शक्ति से नियमन मानते हैं, और वेदांत जो है वो शक्ति से नियमन नहीं मानता है, वो सर्वरूप होने के कारण नियमन मानता है। जैसे मेरे रूप में परमात्मा है तो यहां का नियमन वो मेरे द्वारा कर रहा है, आपके रूप में परमात्मा है तो आपका नियमन आपके द्वारा कर रहा है। ऐसे ही जो पूरे काल में व्याप्त है वो काल का नियमन कर रहा है, जो पूरे देश में व्याप्त है वो देश का नियमन कर रहा है, जो वस्तु में व्याप्त है वो वस्तु का नियमन कर रहा है। अलग रह करके नियमन करने का ये वेदांत में नियमन करने का ढंग नहीं है। अंतर्यामी जो मानते हैं उसमें यामी कह देते बस, खाली अंतर क्यों लिखा फिर? अंतर माने अंतर में रह करके जो यमन करे, शासन नियमन करे, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। तो सबके भीतर आत्मा रूप से ये रह करके और सबका नियमन करते हैं। अच्छा, पहले काल की बात देख लो, क्योंकि भूत भव्य लिखा है ना। वर्तमान काल को लो पहले, तो वर्तमान काल की प्रतीति कैसे होती है, काल की प्रतीति कैसे होती है? अगर वृत्ति में परिवर्तन ना हो, अंतःकरण की जो वृत्ति है उसमें यदि परिवर्तन ना हो तो किसी काल का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे कोई मान लो यहां से यहां गया तो पहले यहां वाली वृत्ति बनी और फिर वहां वाली वृत्ति बनी, तो वृत्ति में परिवर्तन हो गया ना। तो जब परिवर्तन होता है तभी काल का ज्ञान होता है। ये सूर्य चंद्र तारे जितने भी हैं ये सब चलते हैं, इसलिए काल का ज्ञान होता है। अब ये एक स्टैंडर्ड बना लिया, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम और क्या नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये नियमन करने का ढंग है, कि वरना तो सबकी घड़ी अलग अलग टाइम बताएगी तो सब एक ही घड़ी से अपना सेट कर लेते हैं। बोले वो जब रेडियो में पिप्स आती हैं 8 बजे सुबह को और रात को 9 बजे, तब अपनी अपनी घड़ी मिला लो, बस फिर वो उसकी रफ्तार सबकी एक सी रहेगी। लेकिन ये सब काल्पनिक हैं, काल में कहीं कोई 0 पॉइंट नहीं है, वो तो एक सतत प्रवाह है, प्रवाह ही नित्य होता है काल। और आत्मा जो है ये कूटस्थ नित्य होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन का साक्षी होता है। तो जब तक वृत्ति नहीं बदलती है तब तक काल का ज्ञान नहीं होता है। और वृत्ति कब बदलेगी नारायण? जब या तो विषय का परिवर्तन हो और या तो वृत्ति के उठने का जो कारण है वो उसमें परिवर्तन हो। बाहर कोई मोटर चल रही है तो आपकी वृत्ति भी चलने शुरू हो जाएगी। और मान लो आंखें बंद हैं, बाहर तो कुछ दिखता नहीं है, समझ लो, कल्पना कर लो कि पांचों ज्ञान इंद्रियां आपकी जो है ठप हैं, लेकिन फिर भी आपकी वृत्ति बन सकती है। सपने में क्या होता है? सपने में तो भी तो वृत्ति परिवर्तन होता है और काल वहां भी मालूम पड़ता है। तो काल जो है असल में वो वृत्ति परिवर्तन के कारण होता है, उसका हेतु चाहे भीतर हो और चाहे वो बाहर हो, हेतु का फर्क होता है। तो जब स्वप्न का काल होता है तो उसका हेतु भी भीतर होता है, तब उस काल का नियमन कौन करता है? वही जो अंतर्यामी है वही भीतर वाले काल का नियमन कर रहा है। अब इस समय बाहर वाले काल का नियमन कौन कर रहा है? घड़ी नहीं कर रही है नारायण। घड़ी तो सिर्फ व्यावहारिक काल का नियमन करती है। काल है सच का नियमन जो है बाहर, जो बाहर के काल में व्याप्त है। वृत्ति ही व्याप्त होती है, एक स्फुरण है, उस स्फुरण का नाम काल है। स्फुरण का ही नाम देश है, स्फुरण का ही नाम वस्तु है, और ये देश काल वस्तु के स्फुरण इनका नियामक अंतर्यामी है, और वो अंतर्यामी को ही आत्मा बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि ईशानुभूत भव्यस्य, ये काल का नियमन करने वाला यही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है। और जब ऐसा ही है तो न तत्व विजुगुप्सते, अब हमारा शरीर न मरे, हम अमर हो जाएं, इसकी कामना वो क्यों करेगा? या किसी का शरीर अमर हो सकता है क्या? देवता लोग भी जो हैं अमृत पीते हैं, तो क्या उनके शरीर अमर हो जाते हैं? शरीर तो उनके भी अमर नहीं होते, काल के काल में सब जाते हैं, ब्रह्मा जी तक चले जाते हैं, फिर और तो किसी की बात ही क्या है। तो काल के काल में कोई नहीं जाता है नारायण। अब फलां व्यक्ति चले गए तो चले गए तो चले गए, बस स्फुरण बंद हो गया उनका। बाहर जो हेतु होता था उनको देख करके कि ये अमुक व्यक्ति हैं, अब ये स्फुरण नहीं होगा, लेकिन स्मृति में तो स्फुरण होगा। मरने वाले के बेटे हैं, पत्नी है, भाई बन रहे, वो जब याद करेंगे तो उसका स्फुरण होगा। तो कहां मरा कोई व्यक्ति? जो सिर्फ बाहर देखते हैं उनके लिए मर गया, और जो भीतर भी देखते हैं तो संबंधी तो सारे भीतर ही देखते हैं, बाहर वाले के लिए थोड़ा बहुत रोल है बस, और क्या। तो ईशानो भूत भव्यस्य न तत्व विजुगुप्सते, अब वो शरीर की रक्षा करने की नहीं सोचता है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये जो शरीर है ये आत्मा में, इसकी कोई दृष्टांत से बताओ कैसे रहता है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? तो भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म में ये जो प्रपंच है ये ऐसे ही है जैसे रज्जु में सर्प है, ऐसे ही आत्मा में ये शरीर ऐसे ही है जैसे रज्जु में सर्प है। तो आत्मा तो हुई रज्जु और उसमें सर्प रूप हुआ ये शरीर, कभी लंबा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी जहरीला दिखता है, कभी फण उठाए दिखता है, कभी फण डाउन दिखता है। क्योंकि एक दफे आप सांप की कल्पना कर लो तो फिर सब कल्पनाएं अपने आप होने लगती हैं। अरे सांप है यहां तो फिर होगा, देखो देखो उसका फन ऊपर को आ रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, हवा चली रस्सी हिल गई। स्वामी रामदेव जी महाराज कहते थे कि एक दफे हम जंगल में थे, ये हिंडन नहीं है, कौन सी नदी है तो मध्य प्रदेश में बहती है ना, ग्वालियर के पास, तो यहां को उसके जंगल में थे हम, तो कुटिया में रात को बाथरूम के लिए बाहर निकले। अब चांदनी रात थी और जंगल में रहने का उनका स्वभाव ही था, तो हमने देखा कि एक आदमी जो है वो बार बार हाथ कभी इधर को करता है, कभी इधर को करता है। हमने कहा भाई भूत देखा तो नहीं था लेकिन सुना जरूर था, आज लगता है भूत के ही दर्शन हो रहे हैं। तो यूं तो फिर हम डर के मारे बाथरूम भी नहीं हुआ ना, फिर कुटिया में घुस गए। अब फिर उसने जोर मारा बाथरूम ने तो फिर बाहर आए निकल के, तो बाथरूम तो खैर हमने मुंह दूसरी तरफ करके यों के कर लिया, लेकिन फिर धीरे से देखा उसकी तरफ तो फिर वो वैसा ही कर रहा था। अब दो तीन बार जब हमने ऐसा देखा तो यों के अब हमने सोचा कि आज इसको फेस कर लो, नहीं तो ये हमेशा डराता ही रहेगा। तो टॉर्च तो यों के हमारे पास थी, वैसे तो चांदनी छिटक रही थी लेकिन फिर भी हमने हाथ में एक डंडा लिया, वो रहता ही था उनके पास डंडा, और टॉर्च भी रख ली दूसरे हाथ में और चल दिए। जाकर के वहां देखा तो ये जो भटिया बोलते हैं ना क्या, मक्का के भुट्टा, भुट्टा तो भुट्टा वो जो है लंबा उसका पेड़ था, उस पर भुटिया आ रही थी और हवा चल रही थी, तो हवा चलने से कभी वो इधर को होती थी कभी इधर को होती थी। अब वो भूत जो था वो भाग गया, अब उसकी जगह भुट्टा बह गया। तो एक दफे आप यदि फेस कर लो तो ये आत्मा में शरीर जो है ऐसा ही है जैसे रस्सी में सांप है, परमात्मा में ये प्रपंच ऐसा ही है जैसे रस्सी में सांप है। दिखता है तो रस्सी दिखती है। आप यूं क्यों मानते हो कि ये प्रपंच दिख रहा है? अरे सब अपना आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। लेकिन आत्मा समझ करके सबको मानो, अलग 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 इकाई समझ करके सबको मानने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बताओ किससे रक्षा करोगे? जब ये पता चल गया कि भुट्टा है सांप भूत नहीं है तो अपने शरीर की रक्षा किससे करोगे? ना तत्व बिज गुप्सते, अब वो रक्षा करने की उसे कोई इच्छा ही नहीं होती। जब शरीर जाना होगा चला जाएगा, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये मौत का डर जो है ना, ये भी एक रोग होता है, डॉक्टरों से आप पूछ लेना। जिन लोगों को मौत का डर ज्यादा लगता है वो रोगी हो जाते हैं। तो ये मृत्यु डरने की चीज नहीं है, इसको एक दफा समझ लो क्या है मृत्यु। शरीर चलना फिरना बंद हो जाएगा, बस यही तो है, मुर्दे को तो देखते हैं ना, इसी का नाम मृत्यु है। लेकिन मैं तो आत्मा हूं, जब ये बोध हो जाता है तो शरीर चले तब भी मैं आत्मा हूं और शरीर ना चले तब भी मैं आत्मा हूं, मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है नारायण। और जैसा मेरे शरीर के बारे में ऐसा ही मेरे सब संबंधियों के बारे में, तो उनके भी लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जातस्य ही मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु जरूर होता है नारायण। तो ततो न विजगुप्सते। अब यहां एक बात आनंद गिरी जी ने लिखी है कि कह तो रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो, एक दफे तो बताया कि ये अंगूठे के बराबर है, और दूसरी दफे कह रहे हैं कि ईशानुभूत भव्यस्य, ये समूचे देश काल का नियामक यही है। तो ये दोनों विरोधी बातें नहीं है? तो बोले एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। महाराष्ट्र इसको ऐसे समझाते हैं, वो कहते हैं मान लो बहुत सारे महात्मा लोग खड़े हैं, सब दाढ़ी मूछ वाले हैं, कोई क्लीन शेप भी होंगे तो दाढ़ी मूछ वाले हैं। अब एक गुरुजी अपने चेले से बोले कि देखो ये जो आदमी खड़ा है ना, बोले कौन सा, कि जिसकी सफेद दाढ़ी है कि हाँ, और इसके बाल भी बड़े हैं कि हाँ, तो बोले ये साधु नहीं है, ये हिंदू साधु नहीं है, ये मुसलमान है। बोले ठीक है मुसलमान है। अब दिख तो रहा है नारायण वो हिंदू साधु की तरह से, लेकिन गुरुजी उसको बता रहे हैं कि ये मुसलमान है। तो उद्देश्य तो हुआ साधु का रूप, और विधेय माने बताना क्या चाहते हैं कि ये मुसलमान है हिंदू नहीं है। ऐसे ही दिखता तो है ये अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर, ध्यान कर रहे हैं ना, तो अंगूठे के बराबर ही मान करके ध्यान किया है। वो ज्योतिर्लिंग भी हमें अंगूठे के बराबर ही दिख रही है, लेकिन श्रुति प्रमाण इसमें नहीं है, ये तो आप भाव से मान रहे हो। श्रुति प्रमाण किसमें है? विधेय क्या है कि ईशानो भूत भव्यस्य, यही परमात्मा है। नारायण और कोई परमात्मा इससे अलग नहीं है, ये अभिप्राय है इसका। एक भविष्यत पुराण की कथा महाराज जी ने और सुनाई है इस संबंध में। अब पुराण तो नारायण पुराण है, उसमें ऐतिहासिकता ढूंढना जो है ये उनके साथ अन्याय करना है। कहीं इतिहास को भी दृष्टांत बना लेते हैं और कहीं कल्पना को भी दृष्टांत बना लेते हैं। अब भागवत में आप पुरंजनोपाख्यान सुनते हो तो वो कोई इतिहास थोड़ा ही है, लेकिन ऐसा बढ़िया वर्णन किया है उसका कि बिल्कुल सच्चा लगता है। वो तो जब अंत में जाके उसका रहस्य बताते हैं तब मालूम पड़ता है कि अरे ये तो दृष्टांत इन्होंने गढ़ा था। तो इसी प्रकार से भविष्य पुराण में एक कल्पना की गई कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य आपस में मिले। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि देखो आपका ये श्लोक मंत्र बोल रहा है अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, पुरुष जो है वो अंगूठे के बराबर, आप इसको ब्रह्म क्यों बोलते हो? तो शंकराचार्य ने जवाब दिया कि आचार्य जी जब यहां अंगूठे के बराबर बोल रहे हैं तो आप उसको अणु परमाण क्यों बोलते हो? ये आत्मा के संबंध में तीन विकल्प हैं, इसका परमाण माने लंबाई चौड़ाई अणु के बराबर है, ये तो रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत अणु परमाण, और मध्यम परमाण ये जैन लोग मानते हैं, जिस शरीर में जाता है उतना ही बड़ा हो जाता है, और विभू परमाण ये वेदांती लोग मानते हैं। विभू माने व्यापक है, जो चीज व्यापक है उसमें छोटाई बड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं है। सांख्य भी विभू परमाण मानता है पुरुष को। नारायण तो बोले भाई आप जो है इसको ब्रह्म क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा आप अणु क्यों बोलते हो? जब अंगुष्ठ प्रमाण लिखा है तो आप अणु क्यों बोलते हो? अणु तो अंगुष्ठ से भी छोटा हुआ ना। तो बोले वो तो अणु तो अंगुष्ठ तो हृदय की लंबाई, हृदय की लंबाई चौड़ाई है, और उसके भीतर जो जीवात्मा रहता है वो अणु के बराबर है। तो बोले बस यही बात हम कहते हैं कि ये जो आप तुम पदार्थ का आपने अभी अनुभव किया यहां पर वो तो अंगूठे के बराबर थी ज्योतिर्लिंग, लेकिन असल में वो ईशानुभूत भव्य से है। जैसे वो असल में अणु परमाण है, अंगूठे के बराबर नहीं है उनके मत में, ऐसे ही हमारे मत में ये ब्रह्म है, ये अंगूठे के बराबर नहीं है। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। बस यही आत्मा का स्वरूप है, और अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, तेरहवां श्लोक है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य सौ श्वः एतद्वै तत्। बोले ये जो अंगूठे के बराबर है इसको ज्योति के रूप में आप देखो, ये बात अभी मैंने बताई दी आपको। तो बोले कैसी ज्योति देखें कि अधूम कहा, जिसमें धुआं ना हो, क्योंकि जहां भी अग्नि होती है वहां धुआं जरूर होता है, यानी ईंधन, ईंधन का धुआं। ये जो है ना गैस की जो आपकी लॉ है उसमें धुआं वो वाला नहीं है लकड़ी वाला, लेकिन धुआं उसमें भी है नारायण, वो इतना कम है कि जरा सा विम लगाओ सो साफ हो जाता है। और पुराने जमाने में बर्तन जो है इतने काले हो जाते थे कि रगड़ने पड़ते थे नारायण, ईंट से रगड़ते थे, जमीन में रगड़ते थे और राख से रगड़ते थे। बिना धुएं की अग्नि होती ही नहीं है, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है। लेकिन ये जो आत्मदेव का ध्यान करने की बात बताई इसमें ऐसा कर मानो कि इसमें धुआं है ही नहीं, अर्थात ये किसी आधार में प्रकट नहीं होता है, निराधार है। अग्नि तो आधार में प्रकट होती है, इसलिए धुआं जरूर होता है। अधूम का महर्षि ने तो इसका अधूम का अर्थ किया है कि जिसमें वासना नहीं है और जिसमें अविद्या नहीं है। अविद्या और वासना इनसे रहित जो आत्मदेव का स्वरूप है उसके रूप में ये अंगूठे के बराबर ध्यान करो तो ईशानो भूत भव्यस्य, ये सब भूत काल और भविष्यत काल और वर्तमान काल का ईशान स एव अद्य, वही आज है, स उष्व और वही कल रहेगा। तुमने पूछा था ना कि आत्मा मरने के बाद रहता है कि नहीं रहता है, तो इस समय है तो कल भी रहेगा, आत्मा का विनाश नहीं होता है। और जो लोग आत्मा को शून्य मानते हैं नारायण, उनका भी यहां खंडन हो गया बौद्ध धर्म का। तो भाष्यकार ने लिखा कि अनेन नायम अस्ति इति चैके इत्ययम् पक्षो न्यायतो अप्राप्तोपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्ता तथा क्षणभंगवादश्च। बौद्धों का क्षणभंगवाद भी इससे खंडित हो जाता है, और जो लोग कहते हैं कि इस समय तो आत्मा है, मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा, उनका भी खंडन हो जाता है। स एव अद्य स उष्व, वही आज है वही कल है, अर्थात वही हमेशा रहने वाला है। ऐसा अमर नित्य जो आत्मा है वो आपका स्वरूप है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधूम का ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौष्व। नारायण, आवाज इतना ही रहने दो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।